में तो एकादशी का व्रत पालन करके एकादशी को या तो निर्जला रहे, नहीं होता है तो कुछ ग्रहण करें, फल है साधारण रूप में जीव का निर्वाह, और दूसरे दिन जरूर उसका पारण करें समय के अंतर्गत। एकादशी समाप्त होने के बाद में द्वादशी का भी चार भाग का एक भाग यदि होता है चौथा चरण, वो भी पहला चरण में कुछ नहीं लेना चाहिए। नहीं आया समझ में ना? जैसे द्वादशी है, द्वादशी को चार भाग कर दो, 12 घंटे क्या वो द्वादशी है, तो पहला चरण हो गया 12 घंटे में से चार 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 तीन तीन, तो वो सूर्योदय से 3 घंटे तक अर्थात 6 से 9 बजे के पहले में ही पारण कर लो, दूसरे चरण में मत जाओ। हम लोग इसके लिए सुविधाओं के लिए अपने पंजिकाओं में पत्राओं में हम लोग ये सब चीज को उल्लेख कर देते हैं। यदि आपने नहीं किया पारण, एकादशी तो कर दिया निर्जला, अथवा जैसे सजला किया या फल फलहारी के साथ में किया, और दूसरे दिन ऐसे काम करते 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 घर के काम में ऐसे उलझ गए, कोई 10 बजे के बाद में कुछ ठाकुर जी को भोग दे करके किया, आपका एकादशी का फल मोहिनी ले लेगी, आपको नहीं मिलेगा, एकदम फल नहीं मिला, इतना परिश्रम किया कुछ मिला नहीं, खोदा पहाड़ और निकली क्या
चूहिया,
चूहिया वो भी पूंछ कटी हुई, कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐसा मत करो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी अपने शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए तो बहुत तो होगा, वो फल तो वो पीछे बतलाएंगे, शरीर के लिए भी करो। यदि 7 दिन के बाद में एक दिन स्कूल और कॉलेजों की और ऑफिसों की छुट्टियां होती हैं, किस लिए होती है विचार कीजिए, कचहरी में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में एक दिन की या 1.5 दिन की छुट्टी होती है, शनिवार को आधी और रविवार को पूरी, क्यों? इसलिए कि 6 दिन काम करते करते एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है शक्ति, और फिर से शक्ति लाने के लिए कुछ विश्राम करते हैं, कुछ टहलने जाते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, मन को ठीक कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए यदि एक व्यक्ति 15 दिन में अपने इंद्रियों को यदि थोड़ा सा विश्राम दे, तो इसके रहने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये हजम कर सकेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्त होने की ये एकादशी है, ऐसे समझो। जो एकादशी नहीं करते उनका तंदुरुस्ती कभी भी ठीक नहीं रह सकती है। बहुत से लोग एकादशी नहीं करते, धीरे धीरे मोटा होते 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 ऐसे हो जाते हैं जो उनको उठने के लिए इसमें रस्सी लटकानी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, रिक्शे में चढ़ाने के लिए ले जाने के लिए उनको बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन सब की संयम के साथ में एकादशी करना चाहिए। परमार्थिक रूप में ये तो मैंने बतलाया, जो आदमी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या तक में अधिक रोग बढ़ते हैं और मरते हैं। अस्पतालों में जाइए और अपने घरों में कोई किसी को रोग होना देखेंगे, दिन में जैसे तैसे बीत गया, रात जहां आरंभ हुई एक प्रहर बीता, 2 प्रहर बीता, बस घड़ी कितनी बजी, समय ही नहीं खत्म होता। इसलिए ये सबको विशेष करके वृद्ध लोग इसका पालन जरूर करेंगे, बचपन से ही अभ्यास किया जाए एकादशी का। देखिए एक शास्त्र में एक ऐसी बात कही गई कि एक चित्रांगद धर्मांगद नाम के राजा थे, पुराणों की पद्म पुराण की बात है। ये सब साइंटिफिक बेसिस के ऊपर में ये सब चीजें हमारे पुराण हैं, बाइबल कुरान और जितने भी हैं उनसे कोटि गुण ये श्रेष्ठ है। सब कुछ झूठ हो सकता है, सूर्य पूर्व में उगते हैं ये भी झूठ हो सकता है, किंतु वेद की एक लाइन कभी भी झूठ नहीं होगी, इस चीज को ठीक रखेंगे। शास्त्रों की बातें हमारी कभी भी किसी को समझ में आए और नहीं आए, किंतु वह बात परम सत्य है। विज्ञान जब खूब उन्नत अधिक हो जाएगा, पूर्ण उन्नत, तब किसी समय ये चीजों को समझेगा। उस दिन उनके समझ में ये आएगा थ्योरी कि सूर्य ग्रहण इत्यादि के समय में राहु और केतु क्या होता है, उनके समय में पीछे समझेंगे। वो छाया शक्ति है, उस शक्ति का नाम राहु केतु इत्यादि लिखा गया और उसका क्या प्रभाव पड़ता है कोटि कोटि वर्षों से हमारे भारत संस्कृति में, इन चीजों को पीछे समझ। अभी तो लोग उपहास करते हैं पढ़े लिखे लोग, जितने पढ़े लिखे लोग विशेष करके आधुनिक, वो उपहास से जो हमारी भारतीय संस्कृति का कोई भी चीज ऐसा नहीं। इसलिए एकादशी को उपहास मत समझेंगे और बेकार का चीज मत समझेंगे, इसलिए एकादशी प्रत्येक व्यक्ति करेगा। तो एक धर्मांगद नाम के राजा थे, उनके लड़के का नाम रुक्मांगद। राजा अपने बचपन से ही एकादशी का व्रत रखते थे। जब वो कुछ प्रौढ़ हो गए 50-60 वर्ष के, तो अपने बेटे को राज दे करके और वो वन में चले गए तपस्या करके। लड़के को कहा गया कि 8 वर्ष से लेकर के हमारे राज्य में 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों के लिए अनिवार्य है, और यदि कोई नहीं एकादशी करेगा तो उसको राज्य से निकाल दिया जाए और सारी सुविधाएं उनकी समाप्त कर दी जाए। ढिढोरा प्रति एकादशी के पहले दिन में एकादशी के लिए ढिढोरा बद्ध, आज एकादशी है सभी को करना है, इसलिए बाध्य होकर के भी लोगों को करना पड़ता है। जब राजा जब चले गए तो वो तपस्या करने, तो कुछ विचार हुआ। विचार ये हुआ कि एकादशी व्रत करके सारे लोग बैकुंठ को जा रहे हैं, कोई भी एकादशी करता है तो एकादशी भगवान का स्वरूप है, जगत के कल्याण के लिए सहज रूप में लोगों को संसारिक क्लेशों से पार करने के लिए भगवान ही एकादशी के रूप में अवतरित है। एकादशी और भगवान दो नहीं है। भगवान को उपासना करने के लिए सबसे पहले एकादशी के दिन हम लोगों को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। इसलिए टिढोरा पिटवा रहे थे, और इधर में धर्मराज ने देखा कि हमारा ये जो जेल खाना है नरक, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं, खाली हो गया। उन्होंने अब इसकी आवश्यकता क्या है, इसलिए भगवान के पास में पहुंच करके निवेदन किया, अब तो कोई नरक में जाता ही नहीं है, इसलिए ये अपना जो पास है बांधने का और चित्रगुप्त का खाता है नरक और स्वर्ग के लिए जो बुरा या अच्छा कर्म करता है, ये अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकादशी पालन कर लो और संसार के दुखों से दूर होकर के भगवान के पास में पहुंच जाओ, इसलिए अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब रिजाइन देता हूं। तो जो नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो तो सही। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने बैठ जाओ मुझे, अभी बैठ जाओ चुपचाप। ब्रह्मा जी ने कहा मनी मन में, बस साथ ही साथ में एक 16 वर्ष की एक बड़ी सुंदरी किशोरी एक लड़की उनसे पैदा हो गई, मन के साथ ही जहां इच्छा की हो गई। उन्होंने कहा जैसे मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या करना चाहिए मुझे, किस लिए हमको आपने बनाया। नहीं कि तू मेरी बेटी है, तुमको एक मैंने विशेष कारण के लिए तुमको प्रकट किया है, तुम्हारा नाम मोहिनी रहेगा। तुम ऐसा करो जगत में जाकर के कोई एकादशी व्रत न करे, विशेष करके राजा धर्मांगद जो अभी राज्य में तपस्या करने के लिए गए वो एकादशी न करें और उनका लड़का भी ना करें, ऐसी व्यवस्था करो। वो गई और जाकर के ठीक राजा जहां पर तपस्या कर रहा था वहीं पर जाकर के सुंदर रूप से वहीं पर खड़ी हो गई, उनके तरफ में देखने लगी, ये उसके तरफ में देख करके आकर्षित हो गए। कुछ आप कौन हैं, मैंने कहा जी आप कौन हैं, तो मैं राजा धर्मंगद हूँ, इस समय मैं राज्य छोड़कर के बेटे को इसमें कर यहाँ तपस्या कर। उन्होंने कहा मैं अपने लिए पति खोज रही हूँ, जो कोई पति मिलेगा तो हमसे शादी करेंगे, आपको देख करके हमको बहुत आप पसंद हुए, इसलिए आप हमें पत्नी रूप में ग्रहण करें। तो वो तो ये चाहते, देख करके वो माया में मुग्ध हो गए। उसने एक शर्त लगाई, यदि आप हमारे साथ में शादी करेंगे तो ये शर्त रहेगी कि हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी, और जिस दिन नहीं मानेंगे हम छोड़ करके चले जाएंगे। ए ओ मस्त, ऐसा ही होगा, तुम जैसे कहेगी उठाएगी तो उठेंगे, बैठाएगी तो बैठेंगे, अब तुम हमारे साथ में रहो। तो चलो राज्य में लौटे। इधर उनके लड़के को खबर मिली, हमारे पिताजी नौ संगिनी लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, राज्य में लौट रहे हैं और राज्य भी करेंगे। बहुत आनंद, अच्छा कोई बात नहीं, अब ठीक है पिताजी राज्य करेंगे। उन्होंने अपनी मैया को कहा कि मैया एक बात कर, पिताजी आ रहे हैं और अभी विवाह तो नहीं हुआ है किंतु यहाँ पर विवाह होगा, एक किशोरी को साथ मिला रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, तुम उनकी दासी बन करके सेवा करना और मैं भी उन दोनों की दास बन करके उनकी सेवा करना। पिताजी है ना, और वो तो अब छोटी मैया मेरी हो गई, और तुम ऐसा समझना जो तेरा प्रभु और तोरा स्वामिनी तेरी वही रहेगी, कजे बेटा जैसा कह रहा है वैसा ही। आए उनको बहुत उत्साह के साथ में हाथी घोड़े लेकर शंखनाद करते हुए उनका विशाल रूप में ये किया, स्वागत किया। जब वो आ गए तो यहां पर शादी भी हुई। वो जो पहले वाली रानी है सब प्रकार से इनकी सेवा करने, या बेटा भी, और बेटे ने वो राज्य जो लिया था उनके चरणों में पेश किया, महाराज आप ही राज रहे, मैं आपका सेवक आपकी सेवा करूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। इतने में एकादशी का दिन आया, कहा बेटा तुम घोषणा कर दो जो कल एकादशी है और सभी लोग पालन करें। घोषणा हो रही थी इतने में छोटी रानी, अब उसने कहा महाराज जी किस चीज की घोषणा हो रही है? तो कल एकादशी है इसलिए हमारे राज्य में 5 वर्ष से लेकर के उम्र की 80 वर्ष तक के लोगों पर यह पाबंदी है, जरूर एकादशी व्रत करना पड़ेगा। यदि नींद जला कर सके तो ठीक है, और नहीं तो कुछ थोड़ा सा आहार लेकर के और एकादशी करें, और दूसरे दिन तीसरे दिन पारण करना होगा, उस दिन शयन नहीं करना है, खूब सहज रूप में कुछ फल फूल लेना, नहीं तो वो भी नहीं। अच्छा ठीक, रानी ने कहा कि आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते। क्यों? मैं आपने विवाह के समय में वचन दिया था एकादशी हम जो कहेंगे करेंगे, आपने कहा था कि करेंगे, कल एकादशी आपको नहीं करना होगा, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सका, तो मैं चली अब तुम्हारे पास में नहीं रही। मैंने कहा था जी आप एकादशी मत की, क्यों नहीं करें? राजा ने पूछा। तो राजाओं के लिए ये निषिद्ध है, क्यों? राजा लोगों को शक्तिशाली होना चाहिए, आप नहीं खाएंगे दुर्बल हो जाएंगे, घर में आप कहीं जाए रहेंगे ना कहेंगी स्त्रियां अरे नहीं खाने से दुर्बल हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे, और पुरुष लोग अभी स्त्री को भी कहेंगे ये देखो तुम एकादशी ऐसा करना, तुम एकादशी मत करना, फल फूल ये पूरी कचौड़ी उस दिन और अच्छी तरह से करना, विशेष करके बंगाल में उस दिन मांस बनेगा जरूर, मछली बनेगी एकादशी के दिन में, ठीक उल्टा भी परिचित करें। तो उन्होंने कहा ये आप नहीं करेंगे इसलिए कि दुर्बल हो गए, आप राजा हैं, क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए, जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं वो करेंगी, सधवा जो है वो नहीं करेंगी, अब पुरुषों में जो विधुर हो गए अब किसी काम के नहीं रहे, रिटायर्ड हो गए लाइफ से, जो अब पैसा नहीं कमा सकते, घर में कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोग एकादशी करें। भैया तेरी बात सब गलत है, तो ब्राह्मणों को बुलाइए, बड़े बड़े विद्वानों को। उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको बुलाया, ये पहले ही वो जाकर के उनके हाथों में कुछ अश्वत्थियां कुछ कुछ पूरी मुट्ठी भर जाए सब लोगों को दे दी, और कहा जी देखो राय हमारी तरफ देना, एकादशी का प्रसंग आया, तुम कहना जैसे राजा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा दुर्बल हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा ही विधान दिया गया। पैसे से क्या नहीं उलट जाता है? पैसे से आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी राय बदल जाते हैं, बड़े बड़े आदमियों के जीभ में पानी चूने लगता है, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया और राजा को कहा कि आप एकादशी मत करें। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की कोई भी आ जाए मैं उसकी बात नहीं, मैं तो जरूर करूंगा एकादशी। रानी ने कहा कि ब्राह्मण की भी बात नहीं मानी तो ये ब्राह्मण घूसखोर है, विशेष करके ब्राह्मण लोग एक पैसा के लिए भी झूठ बोल देंगे, और कली के ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है, प्रत्येक विधान को बदल देते हैं, उनमें ब्राह्मणत्व नहीं। जो एकादशी पालन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो तो ब्राह्मण है ही नहीं है। ब्राह्मणत्व कहा जो भगवान की भक्ति करते हैं, सदाचार संपन्न है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जिसे मैं तेरी बात नहीं मानता, तुम हमारे घर से निकल जाओ, जाओ कोई बात नहीं, तुम हमको छोड़। तो वो घर से निकल करके बड़ी दुखी होकर के निकल करके जब जाने लगी तो वो पुरानी जो रानी थी कह जी बहन तुम क्यों जा रही, राजा की बात मान लो, तुम एकादशी करो, तुम्हारा भी कल्याण है, उनका भी कल्याण है, उनको प्रतिज्ञा मत फटाओ, तेरे पति है ना, परमेश्वर पति के समान होते हैं, तुम उनकी बात मानो। किंतु किसी तरह से वो बात नहीं मान नहीं मान रही। अंत में बोली अच्छा तुम कोई भी शर्त लगाओ, उस शर्त को मैं मानने के लिए तैयार हूं, किंतु ये एकादशी के लिए राजा को हुक्म ये दे दो। हाँ एक शर्त है, यदि राजा और रानी आ अपना बेटा जो चित्रांगद है रुक्मांगद उसको राज्यसभा में बुलाकर और उसका गला काट कर और थाली में दे कर हमको दे दो तो एकादशी कर सकते हैं तुम भी वो भी। कह ये हमको मंजूर है, बेटा का बलिदान पिता की सेवा करने के लिए हमको ये मंजूर है। राजा से अच्छा तो राजा को कहो, राजा जी को कहा राजा जी मैं नहीं स्वीकार करता, उसको घर से बाहर कर दो, गधे पर बैठा करके सिर मुंडन करके उसको बैठा दो, मैं उसकी बात नहीं मानता। रानी ने कहा ऐसा मत कीजिए, आपने प्रतिज्ञा किया है जो उसकी सब बात मानेंगे, इसलिए बात मानना चाहिए। किंतु यदि वो कह रही है जैसे अपने बेटे का यदि सिर दे दो तो हम लोग तैयार भी, ये बेटा तो फिर हो जाएगा, कोई चिंता, धर्म की रक्षा कर, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है, देखेंगे एकादशी हम लोगों की रक्षा करती है कि नहीं, एकादशी भगवान का स्वरूप है। बड़ी मुश्किल से राजी हुए। वो जो छोटी वाली थी बन ठन करके इचलाती हुई राज्यसभा में आई, राजा और रानी भी पुराने वाले आए और बेटे को खड़ा कर दिया। राजा ने अपने हाथ में तलवार लिया, सोने की एक थाल रख दी गई और उसमें काट करके उस तस्करी में रख करके उसको उपहार देंगे। वो बड़ी खुश हो रही थी मोहिनी, ब्रह्मा जी की भेजी हुई है, इसको याद रखिए, किसी विशेष काम से आई है, ये साक्षात माया का रूप है। राजा ने जो ही तलवार उठाई, इतने में जो ब्रह्मा जी थे और वो जो धर्म साक्षात थे साथ ही साथ आकर के उसके हाथों को पकड़ लिए। हो गई परीक्षा, बस वर मांगो। मैं बार यही मानता हूं कि ऐसी कड़ी परीक्षा न ली जाए, विशेष करके कलयुग के लोग ऐसी प्रतिज्ञा को ये नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी कड़ी परीक्षा न ली जाए। मैं प्रसन्न हो गया तो उसको अभी बैकुंठ ले चलता हूं, और तुम्हारा बेटा जब तक जीवित है तब तक राज्य करेगा और इसके बाद में वो भी बैकुंठ में आएगा। जो एकादशी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता है, जो कर सकती है, बेटे का भी सिर काट करके दे करके भी एकादशी पालन कर सकता है, उसके लिए आदेश हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं उसका ऋणी जब हो जाता हूं, उसका हमारे प्रति प्रेमा भक्ति हो जाती है, वो ब्रज को जाएगा। मौनी उठ करके खड़ी हो गई, महाराज हमको क्षमा कीजिए, महारानी हमको क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी से कहा जाए, आपका यह आदेश पालन करने के लिए हमको कितना क्या करना पड़ा, मेरी क्या गति होगी? कहिए बेटी तेरी गति ठीक होगी। जो लोग एकादशी नहीं करें, एकादशी के दिन अन्न खाएं, तो जो लोग अन्न खाते हैं उनका जितना पाप है, जो कुछ पाप है ब्रह्महत्या से लेकर के एकादशी के दिन में पाप, एकादशी करने से शुद्ध रूप में उनका सब दूर हो जाता है, और नहीं तो सब पाप उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। वो दिन आदमी अन्न खाना माने पाप खाता है। ये शास्त्रों ने बहुत विचार करके, बहुत गवेषणा करके इस भगवान की इस वाणी को शास्त्रों में दिया है, इसलिए झूठा मत समझिए, अतिरिक्त भी मत समझिए, अतिरंजित भी मत समझिए, इसको पूर्ण रूप से ठीक समझिए। यदि भजन में यदि प्रवेश करना है, इस जीवन में लौकिक जीवन में पारलौकिक जीवन में यदि सुखी होना है, रोगों से यदि दूर रहना है, तो जरूर रूप में एकादशी का पालन करें। देखिए जैसे उसका रोग होता है, नहीं तो एकादशी को करे। तो मैंने देखा कुछ दिन पहले एक गाय यहीं पर मर रही थी, फूल गई थी, अब आंखों डबडबा रही थी, देख भी नहीं पा रही थी, मर भी नहीं गई थी, जीवित भी नहीं हुई। एक महिला हमारे यहाँ पर आती हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हमको बड़ी दया आई। हमने कहा जैसे एक काशी मैया गौ माँ के सामने गई, कहा जैसे मैंने ये काशी क्या, उसका एक एक काशी का फल है गौ माता, आपको मैं देता, आप सुख से या तो बच जाएं और नहीं तो प्राण को छोड़। और यही संकल्प किया, गाय रोती हुई हमारे तरफ में देखी और बड़े आनंद के साथ में प्राणों को छोड़। साधारण एकादशी नहीं है, हमने और जगह भी परीक्षा करके देखी है। शास्त्रों की बातें पूर्ण रूप में सत्य, इस चीज को समझे। यदि जीवन में सुखी होना चाहते एकादशी करें, और ऐसा एकादशी जो मैंने कहा वो करें। उन्होंने कहा कि हमको क्या होगा, मोनी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग एकादशी तो करेंगे अच्छी तरह से, और दूसरे दिन ठीक समय के अनुसार में पारण नहीं करेंगे, उनका फल तुमको मिल जाएगा, लाखों लोगों का जो नहीं करेंगे। एकादशी किया या दसवीं विद्या एकादशी किया तो उनको तो फल नहीं मिलेगा, किंतु उसका फल तुमको मिल जाए, और दूसरे दिन जो पारण नहीं करेंगे उसका फल भी तुमको, इसलिए तुम्हारा तो वैकुंठ में निरंतर गति होगी। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी माताओं, प्यारी बहनें और प्यारी बेटियां और बेटे, एकादशी जरूर करो नियम के साथ। दूध में राबड़ी घोल करके उसमें पेड़ा दे करके मत खाओ, नहीं? मत खाओ, बहुत साधारण रूप में उस दिन कुछ मत लो। उस दिन चावल या रोटी या घी में लगी हुई कोई चीज भी मिली हुई, ये सब अन्न किसी को दान मत दो, और दान तो खबरदार किसी को मत दो। दान देने वाले लोगों को, जो दान लेते हैं, आज जो दान देते हैं उनको फिर से लेना पड़ता है जन्म, और फिर दूसरे जन्म में जो दान देते हैं उनको फिर लेना पड़ता है, इसलिए दान मत दो। भोजन मत करो कभी जीवन में, भोजन क्या करेगा, नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। हमसे एक आदमी ने पूछा, महाराज जी आप क्या भोजन लेते हैं? मैंने कहा जी मैंने तो जीवन में कभी भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया? अरे दुर्वासा जी जैसे नहीं किया, हम लोग भोजन नहीं करते हैं, हम प्रसाद की सेवा करते हैं। आप लोग प्रसाद की सेवा करें, दान मत करें। अरे दान किसी चीज को करेंगे, है कुछ तुम्हारा शरीर है, दान क्या करेगा? दान तुम्हारी यदि कोई चीज हो तो दान करेगा, खबरदार दान मत करो। ये प्रभु के सब चीजें हैं, प्रभु की वस्तुएं हैं, ये सब प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं, मैं इनसे प्रभु की ही सेवा कर रहा हूं, इस रूप में दो, इसमें दोष नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक दो जन्म नहीं, लाख जन्म लेने पड़ेंगे और भोग भोगने पड़ेंगे। इसलिए एकादशी को बड़े संयम के साथ में, सावधानी के साथ में करना चाहिए। एकादशी का, एक भी एकादशी यदि कोई करे निश्चित रूप में यह गारंटी है समस्त दुखों को, जन्म मरण के इत्यादि को छोड़ करके भगवान की शुद्धा भक्ति पा करके प्रेमा भक्ति और जरूर बैकुंठ, तो अवश्यंभावी हो सकता है कि शुद्ध वैष्णवों का, प्रेमी भक्तों का, रसिक वैष्णवों का संग हो जाए तो वो गोलोक वृंदावन में भी वो पहुंच सकता है। इसलिए एकादशी जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, दशम स्कंद से, परसों से दशम स्कंद चल रहा है, हमने भी 10 मिनट कुछ बतलाए। मैं रोज रोज आता किंतु कुछ बोलता किंतु तबीयत ठीक नहीं थी। शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर रूप से आप लोगों को सुनाया, ऐसा भागवत जगत में बहुत कम होता है। बिना किसी लालसा से संसारी कोई भी कामना नहीं, आप लोगों में भी कोई कामना न रहे, कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में प्रीति रहे, बस यही एक भावना रहे। प्रसंग हम लोगों का कल का शायद आया, दामोदर बंधन था, इसके बाद में अन्नकूट हुआ, इसके बाद में गोपियों का समाज किया है, कृष्ण के साथ में गोपियों के समाज। उसमें पहले आया गोपी गीत, गोपी गीत मैंने प्रेम के प्रारंभ में प्रेम होने पर कृष्ण से, किंतु कृष्ण का संग नहीं मिला, उनकी सेवा नहीं मिली, तो उसको कहते हैं पूर्व राग। राग माने अनुराग। गोपियां कृष्ण से नहीं मिली हैं अभी, किंतु कृष्ण को दूर से दर्शन किया, अद्भुत रूप, मानो विश्व का सारा रूप एकत्र मिलकर के कृष्ण ये ऐसा रूप जगत में कहीं नहीं। नारायण है सुंदर, उनसे राम सुंदर है, राम भी बड़े सुंदर है, उनके समान कोई सुंदर नहीं, किंतु द्वारकाधीश जिनका प्रसंग अभी सुना उनसे भी बड़े सुंदर है, क्योंकि द्वारका, किंतु द्वारका जी का भी, द्वारकाधीश का भी रूप फीका पड़ जाता है किनके सामने, ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर, नव किशोर नटवर, इन्होंने बतलाया होगा, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्ण यो कर्णिकार विप्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु रथर सुधया पूरयन गोप बिंदे बिंदारण्यम शबद रमणम प्राविशत। श्रीमद भागवत का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का सौंदर्य का श्लोक है। सुख जैसे व्यक्ति ब्रह्मवादी, ब्रह्म में सब समय डूबे रहने वाले, जो नंगे रहते थे ये भी नहीं जानते थे कि मैं नंगा हूं, न कपड़ा पहना हूं कि क्या हूं, होश नहीं, संसार की कोई स्मृति नहीं, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के गुणों को सुन करके आकृष्ट होकर के चला इसी श्लोक को, और फिर उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। गोपियों ने, गोपियों के मुख से निकले हुए या सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा, अद्भुत श्लोक, इसकी भी व्याख्या ब्रह्मचारी जी ने किया। इसके बाद में उसमें गोपियों के कैसे भाव हैं वो हम लोगों में आने चाहिए, पूरा नहीं तो थोड़ा सा भी आना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। श्रीमद् भागवत और हमारे शास्त्र कहते हैं हम लोग कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण से अलग नहीं है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, 84 लाख योनियों में जो कुछ भी है, जड़ चेतन जितने भी जीव हैं वो सभी कृष्ण के अंश हैं। हम लोग कृष्ण की सेवा न करने से, कृष्ण को भूलने से, जिस कारण से भी हो भूलने से, ये संसार रूपी कारागार में आए हैं। ये कारागार है कैसा कारागार, कृष्ण ने एक बेड़ी बनाई, सोने की और लोहे की नहीं, कैसी बेड़ी? आसक्ति। ऐसी आसक्ति, उस आसक्ति को छोड़कर के तस से मस नहीं हो सकते कोई भी। स्त्रियों की गोदी में, महिलाओं की गोदी में एक बेटा दे दिया, सारी आसक्ति आ गई ना। एक गाय है, उसका बछड़ा है, गाय को छोड़ दो, बछड़े को गोदी में लेकर के चलो तो गैया क्या करेगी? गैया करो को मारो, मत पाए। एक सुअर, उसका बच्चा है, उसको बांध करके ले लो और सुअर को हजार मारो, वो देखो जे दौड़ करके आए। उसके मरना कबूल है किंतु बच्चे को छोड़ना कबूल नहीं। इसको कहते हैं ममता या आसक्ति। प्रभु ने हमें इस जेल खाने में डाल करके कोई हथकड़ी बेड़ी और नहीं दी, आसक्ति रूपी ये बेड़ी और ये हथकड़ी। जेल खाने से भी ये कठिन है, ऐसी मीठी मीठी है ये, बड़ी मधुर ये लगती है आसक्ति। इसी में देखो आसक्ति से प्रभु ने ऐसा बांध रखा है माया जाल को। हम समझते हैं कि हमारे माता पिता सास ससुर सुखी नहीं जीवन में हुए, किंतु तभी अपने बेटी का वो महिला जरूर विवाह कराएगी बेटी की। बेटी और बेटा कहते नहीं हम वहां हमको विवाह। अच्छा ये बतलाइए आपकी उम्र कितनी हुई? दादू जी कहेंगे जे मेरी उम्र 100 वर्ष की हो गई, और दादी जी कहेंगी 100 वर्ष की हो गई, 99 वर्ष की मेरी उम्र हो गई। अच्छा आप क्या चाहते हैं? बेटा तू विवाह कर ले। अच्छा तो आपने जो विवाह दोनों ने किया, आप लोग सब प्रकार से सुखी हैं, तो दांत टूट रहे हैं जब बोलते हैं तो जी ये होठ हिल रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते नठिया लेकर के, और बहू जी झाड़ू लेकर के उनका पीठ साफ करती हैं ससुर और सास की, समझ रही हैं? झाड़ू से साफ करना। और बेटा कहता है नए नए झाड़ू देता है बहू को, अपनी पत्नी को, झाड़ू से साफ करो इनको। खांसते खांसते अभी बेटे मर नहीं जाते, मर नहीं जाते। तब कह जे बेटा तू नाती तू विवाह कर ले। नहीं भैया मैं नहीं शादी कर। अरे बेटा देखो अब मैं मरने वाली हूं शादी, आपको कुछ सुख मिला? क्या सुख मिला? क्या सुख मिला आप अपने से पूछिए जो 60 वर्ष से हो गए हैं। रोगों का घर बन जाता है शरीर, बेटा सब संपत्ति कब्जा कर लेगा, ये ऐसी रीति है। आप अपने बेटे को स्नेह करते हैं, बेटा ऊपर में आपके तरफ नहीं देखेगा, वो अपने बेटे को देखेगा। देखिए तो ये सब संसार की यही आसक्ति है। इस आसक्ति का कटने का नाम ही मुक्ति है। भागवती आसक्ति को काट सकते हैं, आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। अरे कौन किसका है अच्छी तरह से विचार करो, सब अपने स्वार्थ के हैं। भागवत कहता है ऐसा स्वार्थ मत करो, तो सबसे प्रीति रखो, ममता शक्ति मत रखो। ममता शक्ति है कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, ब्रज के अंतर्गत में गोवर्धन गिरिराज जमुना में आसक्ति रखो। कृष्ण ही मेरे हैं, कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, ये इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जैसे स्त्री के लिए पति होता है उससे भी कोटि गुना अधिक होता है प्रियतम। कृष्ण रुक्मिणी के, अभी रुक्मिणी का प्रसंग सुना ना, कितना सुंदर। रुक्मिणी का भी ये प्रसंग सुनाया, उन दोनों में जो विवाद प्रेम कलह हुआ था, अभी प्रेम कलह सुना ना, कितना सुंदर और रोचक है प्रेम कलह। तो ये किस चीज में कर रहा था, भूल गया।
रुक्मिणी प्रेम कलह संसार के आसक्ति,
हाँ आसक्ति के लिए
कटना ही मुक्ति है।
प्रेम रखा, रुक्मिणी जी की शादी कृष्ण से हुई है, राधा जी की और गोपियों की शादी नहीं हुई कृष्ण से, की हुई नहीं, किंतु रुक्मिणी राधा, रुक्मिणी और कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता, राधा ही कृष्ण कहते हैं क्यों? कुछ कारण तो होना चाहिए। रुक्मिणी जी का सत्यभामा का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, किंतु राधा जी का प्रेम के सामने में एक एक परमाणु भी नहीं है। राधा जी का प्रेम जितना अगाध है, विवाह के ऊपर में ये निर्भर नहीं करता है। ये तो हृदय के अंतरतम से यह प्रेम होता है। पिता माता ने जोर से किसी दूसरे को शादी दे दी और लड़की किसी को दूसरे को चाहे, जीवन प्राण छोड़ देना वो अत्यंत सहज रूप में छोड़ सकती है, उस प्रेम को नहीं छोड़ सकती। इसलिए विवाह में कुछ बंधन होता है, पत्नी दासी बन जाती है, पति प्रभु बन जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं था, इसलिए राधा जी के प्रियतम थे कृष्ण और कृष्ण की राधा जी प्रियतमा थी। ये प्रेम का संबंध है, वहां पर प्रेम का संबंध नहीं, वहां पर पति और पत्नी का संबंध है। वो कुछ पैसे से खरीदा गया, समाज के अंदर में लेकर के क्या, हृदय का वो नहीं होता। रुक्मिणी का यद्यपि प्रेम का था, माता पिता दूसरे से शादी करना चाहते थे और रुक्मिणी किससे चाहती थी, ये भी ठीक है, किंतु उससे भी कोटि गुण श्रेष्ठ है राधा जी का प्रेम। ये एक दिन में एक मिनट की बात नहीं है, ये समझा दो राधा जी का प्रेम कैसा है। इसको समझने के लिए 2-4 हजार वर्ष चाहिए, साधन भजन चाहिए, तब अपने भावों को मैं दे सकता हूं। ऐसे नहीं, ये कोई हारमोनियम का कोई शिक्षक नहीं है जो ऐसा दिया जाए। दीक्षा के माध्यम से गुरु शिष्य को यही सब चीजें देता है और उसका साधन करना होता है, तब समझेंगे ये ब्रज का प्रेम क्या चीज है, यशोदा का प्रेम कैसा है, सखाओं का प्रेम कैसा है। इसलिए ये ममता के रूप में करा था, कृष्ण के साथ में ये ममता हो, ये कृष्ण मेरे बेटे हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, गोपियों का यह प्रीतम का भाव है। यदि भागवत को श्रवण करके ये भाव नहीं आया, समझे जी भागवत अभी पूरा नहीं सुना। इसलिए भागवत में उसी बतलाया मैंने पूर्वराग, पूर्वराग में गोपियों की क्या विरह की दशा है, कृष्ण से मिलने के लिए कितनी छटपटाहट उनके अंदर में है। ऐसा ही भाव हमारे अंदर में होना चाहिए, हम कृष्ण को अपने प्रियतम को, अपने बेटे को, अपने सखा को भूल करके इस जगत में आए हैं, कैसे उसे मिले, कैसे उसे संबंध हो, इस पर विचार करते हैं। गोपियां कहती हैं कि ओह ये हिरणिया धन्य है, धन्यास्म मूढ़ मतयो हरण्येता जानंद नंदनम उपक्त विचित्र वेशा आकर्ण मेरु रणितम सह कृष्ण सारा पूजांग हिरणिया धन्य है। गोपियां देख रही हैं, कहां से, घर में बैठे हुए देख रही हैं, अपने भाव नेत्र से देख रही हैं, उनका भाव नेत्र से देखना भी परम सत्य है। वो देख रही है कि हिरणी एक है, पीठ थोड़ा सा पीछे लचक गया है, मुख ऊपर में हो गया है, बड़ी प्रेम रूप नेत्रों से कृष्ण के मुखारविंद की तरफ में एकदम निकट पहुंच गई, धीरे 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 मानो मुख से कृष्ण का चुंबन कर लेगी, ऐसे निकट में पहुंच गई और ऐसा कर दिया, मुख उसका खुल गया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बहुत दिनों के बाद में अपने प्रियतम कृष्ण को पाए, कृष्ण की बांसुरी की मीठी आवाज उसने सुनी और अपना सारा हृदय कृष्ण के चरणों में लुढ़का दिया। पीछे पीछे उसका कृष्ण सार माने एक ऐसा हिरण जिसमें काले काले डोरियां हैं, वो पीछे पीछे कभी देखता है अपनी पत्नी की तरफ में और कभी देखता है कृष्ण, कहता है अपनी पत्नी को देख करके कहा तू धन्य है, आज तेरे संबंध से आज मैं भी धन्य हो गया। कृष्ण को अपना सारा प्यार दे दिया, हमारे लिए इतना भी अवशिष्ट नहीं रखा तो भी मैं धन्य हूं। हिरणी उस समय अपने पति को कुछ देखती है, उसने सारा जो प्रेम था उनके चरण में दे दिया, ओहो मैं मर जाऊं तो ये हरिणी बन जाऊ, आज हमारे ये पति हमें कृष्ण के लिए दर्शन करने के लिए आने नहीं देते, यदि हम झाड़ियों से देखती हैं हम ऊपर से देखते हैं, छतों से निकट आने की चेष्टा करते हैं, तो हमारी सास ननद ये ससुर गुरुजन माता पिता भाई सभी हमारी निंदा करते हैं, कहते घर से बाहर कर देंगे। और कहो ये पति कैसा पति, अरे इसका भी सार, इसका हृदय सार कृष्ण नहीं है। आज मैं धन्य हो गया ऐसी पत्नी को पा करके, मैं अब पत्नी नहीं कहूंगा, अब मैं इसे क्या कहूंगा, कृष्ण प्रिया इसने को। ये है प्रेम। उस समय कहते हैं कि मैं मर करके क्या हूं, हमारे पति भी पीछे पीछे आकर के कहें अरे प्यार करना है तो इसे कृष्ण को प्यार कर अपना बनाओ। उस समय पति ननद सास हमें कोई भी बाधा नहीं देंगी, हाय हाय अभी तो कितना ये बाधा देते हैं, अरे ये गाय धन्य है जो दूध जो घास चरना छोड़ दिया, छोड़ करके क्या कर रही है, कान को ऐसा खड़ा कर दिया मन दोना बना दिया और कृष्ण की मधुर बंशी बज रही है, उसे कानों से पी रही है और कृष्ण का रूप देखो देखो तो गैया को, इसकी आंखें कहां है, कृष्ण के मुखारविंद पर लगी और कृष्ण को देखो कैसे हैं, मुस्कुराते हुए मंद मुस्कान के साथ में प्रेम भरी चितवन से इस गाय को तरफ में देख रहे हैं। इस गाय का जीवन धन्य है। अरे बछड़े को तो देखो, उसने थन में मुख लगा दिया और वो दूध मुख में ले गया, किंतु दूध कहां रहा, गले में अटक गया, न भीतर जा रहा है न बाहर आ रहा है, किस लिए, बस वही का वही तन्मय हो गया कृष्ण के रूप को देख करके, उनकी बंसी को देखकर। मर करके मैं या तो बछड़ा बनू या गाय बनू, और कृष्ण का रूप उस समय दर्शन करो कोई भी मना नहीं करेगा। अरे ये देखो तो नदी, नदियां की तरंग जो है वो रुक गई कृष्ण की बंसी और उनका रूप देख करके, जो पानी जा रहा था वो ऊपर से आ रहा और नीचे वाला भी उल्टा बह रहा और उल्टा बहने से भ्रमर आ गई, मानो ये हृदय का ही उसका भग्न हो गया और अपने हृदय को कमल के बहाने कृष्ण के चरणों में न्योछावर कर रही है। इस तरह की भावना को कब कर रही है, पूर्वराग में। ऐसे हम लोगों का भी पूर्वराग है, कुछ कुछ कृष्ण की कथाएं हम लोगों ने सुनी, इसी तरह से स्मरण करना चाहिए, कब कृष्ण मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, महाप्रभु जी कैसे कह रहे हैं, कहां जाऊं, कहां जाने से कृष्ण मिलेंगे। एक पेड़ को तमाल को देख उसको गले से भर लेते हैं, किसी को भी देखते हैं उसके गले को, कहां कृष्ण मिलेंगे। इधर कृष्ण गए जैसे गोपियां देखो ना, जब राष्ट्र स्थली में जो छोड़ करके गए, पशु पक्षी कीट पतंग और डालों से पत्तों से सबसे पुकारेंगे, कृष्ण इधर गए। हम लोगों की भी यदि ऐसे ही होगा, भजन करते 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 सारे शरीर की स्मृति को भूल जाएंगे, देह गे सभी कुछ भूल जाएंगे, हाँ कृष्ण कहा, कृष्ण कहा, मंत्र जपते समय कृष्ण हरे कृष्ण ये सब भावनाएं आए, कोटि कोटि हमारे जन्म बीत गए इस संसार में आवागमन में, अभी तक सुख नहीं मिला, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अभी राष्ट्रपति, अभी प्रधानमंत्री हमारे कोई राव साहब है ना, राव साहब हिल रही है कुर्सी, क्या वो हिल रहा, इसके पहले कौन थे, राजीव जी, देखो कैसा चला गया, कोटि कोटि अरब जो स्विस बैंक इत्यादि में जमा है उनकी रक्षा नहीं कर सका, भारत की सेनाएं उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इंदिरा गांधी की जो रक्षक थे वही भक्षक हो गए, जब उन लोगों की गारंटी नहीं तो हमारी क्या गारंटी है। इसलिए ऐसा सोच करके भगवान का कुछ भजन करो और भजन करो भागवत के अनुसार, ऐसा ही कृष्ण को अपना प्रियतम बना लो, लौकिक बंधु या तो सखा बेटा अथवा प्रियतम बनाओ और भजन करो। पुरना पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग इत्यादि में कितने सब मधुर भाव भरे पड़े हैं, समय हो गया, इधर में भागवत को भी आज संपूर्ण करना है। अभी शायद अभी दशम स्कंद का उत्तरार्ध अभी चल रहा है, रुक्मिणी प्रसंग तक आया कि सुदामा विप्र तक आया, अभी भी बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी शिक्षाएं हैं भागवत में, सारी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। एक एक श्लोक पर 10-10 दिन 20-20 दिन बोला जा सकता है। हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, एक श्लोक उठाया महीनों लग गए, सारा भागवत उसी के अंदर में आ गया। उसी तरह से एक श्लोक में ही सारा भागवत आया। तीन प्रकार से भागवत सुने जाते हैं। 7 दिन में जो सुना जाता है ये तामसिक है, तामसिक तो नहीं कहना चाहिए किंतु कनिष्ठ है। 1 महीने में जो भागवत सुना जाता है ये मध्यम कोटि का भागवत, और जो प्रतिदिन भागवत सुना जाता है जीवन में ये सर्वोत्तम है, अपने जीवन को भागवत बना लिया जाए। इसलिए हम लोग 7 दिन के चक्कर में ना पड़े। अब देखिए 7 दिन में कहने से एक श्लोक भी नहीं मैंने कहा, अभी तो मैंने भूमिका बना दी एक श्लोक कहेंगे। यदि एक श्लोक की व्याख्या में ही हम लोग लग जाएं तो सारा दिन अच्छा चल जाएगा, ये सप्ताह बस वहीं रह जाएगा, पूरी कथा नहीं। इसलिए अभी 7 दिन का संकल्प लिया गया है, अभी ये 7 दिन में जहाँ तक हो सकेगा संक्षेप में ये वर्णन करेंगे। हम लोग यहाँ प्रतिदिन भागवत का ये पाठ इत्यादि प्रवचन करते हैं, जिसको अधिक सुनने की और लालसा है भीतर में गहन भाई ज्ञान करके और उसको ग्रहण करने की यदि है तो प्रतिदिन आप लोग आया करो। दूर वाले हैं नहीं आ सकते, ये सब अपने हाथ पर करेंगे। कैसे कृष्ण में प्रीति हो, कृष्ण ही हमारे प्रिय।